दर्शक राम की सेना जितने बाहर हैं वो दर्शन कर रहे हैं युद्ध का, और रावण की सेना के जितने राक्षस हैं वो दर्शन कर रहे हैं, तो पृथ्वी के दर्शक हैं, और आकाश में दर्शक, आकाश में दर्शन कर रहे हैं देवता लोग, विमानों की बड़ी भीड़ लगी है, आकाश में दर्शन कर रहे हैं राम नाम अयोध्या क्योंकि ये भी एक रस, ये भी एक क्या है रस, भयानक रस, ये भी एक रस है, कोई किसी पर हथियार सब याद है, मानवों की सेना में पास हथियार है, उनके हर क्या हो गया, मानव की सेना के हथियार में कुछ नहीं है, वृक्ष क्योंकि हथियार नाखून है या थप्पड़ और जो है वृक्ष है उनके पास ये हथियार, और राक्षस राक्षसों के पास हथियार उनके रूप पर टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत से हथियार है, ये कोई किसी पर ध्यान नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि राम रावण का युद्ध है वो बहुत भयानक है, इसलिए आकर्षक है, भयानक होने के कारण भी बहुत आकर्षक है, इसलिए कोई किसी पर ध्यान नहीं कर रहा है, सब लोग हथियार लिए हैं, कोई किसी पर ध्यान नहीं कर रहा है, क्योंकि सब दर्शक बने, सब देखना चाहते हैं, ये तो युद्ध है ना कभी होगा ऐसा ना होगा, इसलिए देख लो, उस समय वो सब नहीं था टेक्नोलॉजी, क्या वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड का समय नहीं होता, तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे नहीं देखो, अभी क्या नहीं देख लो, मनुष्य शास्त्र बनो, वीरों को बल पूर्वक नृत्य करते थे, सबके किसके पता, सभी बड़े आश्रय में एक मनुष्य है और दूसरा राक्षस, यहाँ युद्ध जो हो रहा है वो मनुष्य और राक्षस के बीच हो रहा है, भगवान राम जो है मनुष्य की लीला कर रहे हैं, कभी वो बिल्कुल वो नहीं दिखा रहे अपना ऐश्वर्य कि वो भगवान है विष्णु है, क्यों, क्योंकि उसे पर माना कि वानर और मनुष्य के सिवा में किसी के द्वारा ना माना जाए, इसलिए जरूरी है कि भगवान क्या करें पूरी तरह से मनुष्य का व्यवहार करें, क्योंकि रावण को तपस करने के बाद भी जब देवता लोग जो है भगवान की स्तुति करते हैं कि आप तो भगवान हैं आप तो विष्णु हैं, तो भगवान राम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या मैं तो महाराज दशरथ का पुत्र हूँ राम हूँ, मैं तो इतना ही जानता हूँ, आप बताइए मैं कौन, भगवान भगवान उसे कहते हैं, क्यों, क्योंकि राम रावण को वर मिला था कि मनुष्य और वानर के सिवा किसी के द्वारा ना, तो फिर भगवान को यदि जरूरी हो गया कि वे क्या करें पूरी तरह से मनुष्य बनना है, तो फिर भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान को मनुष्य बनना गलत है, लेकिन भगवान अगर चाहें तो मनुष्य का बने पूरी तरह से कर सकते हैं, भगवान मनुष्य अग्नि कर सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं सूक्ष्म दर्शी होते हैं तो वे जानते हैं कि भगवान मनुष्य की जगह है लेकिन मनुष्य नहीं, इसलिए पैदल थे राम तो पैदल थे, वनवासी जो वनवासी होता है वन में वास करता है वो थोड़ी रथ में सवार होगा, और भगवान ने गरुड़ को भी नहीं बुलाया, गरुड़ जी को भी नहीं बुलाया, उनके महान तो गरुड़ जी हैं, तो हमेशा तैयार रहते हैं उनकी सेवा में, तो भगवान गरुड़ पर बैठ कर सकते थे युद्ध करने के, तो गरुड़ को नहीं मिला, क्यों, क्योंकि भगवान उसको वरदान मिला था कि भगवान के द्वारा नहीं मारा जाएगा मनुष्य द्वारा मारा जाएगा, इसलिए भगवान अभी क्या कर रहे हैं मनुष्य बन गए, तो एक मनुष्य है और दूसरा राक्षस है, इन दोनों के बीच में युद्ध देख करके सबके हृदय और खींच गए, आकर्षण आकर्षण। मनुष्य राक्षस का युद्ध एक बहुत आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का राक्षस के साथ कोई मिलान नहीं है, कोई मेल नहीं। राक्षस क्या करते हैं? मनुष्य को खाते हैं, कोई मेल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बहुत आश्चर्य की बात, एक मनुष्य का राक्षस के साथ युद्ध कभी नहीं हुआ है ना। दोनों ओर के सैनिकों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे। तथापि उस संग्राम को देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी, इसे चुपचाप करने दे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे, तैयार है मारने के लिए कोई नहीं। क्यों? आश्चर्य। कैसा युद्ध है? बहुत आश्चर्य आश्चर्य जनक युद्ध है। नाना प्रश्न बुद्धिस्तु प्रेक्षित संग्राम ना विजय राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और बानर श्री राम की ओर देख रहे थे। देखने का मतलब कामना करते, विजय की कामना करते। सब में नेत्र विस्मित थे, अतः निष्कर्ष खड़ी रहने के कारण दोनों सेनाएं चित्र लिखे से जान पड़ते थे। दोनों सेनाएं कैसी हैं? चित्र लिखे समझते हैं। जैसे फोटोग्राफ खींचते हैं, उनके फोटोग्राफ में जितने भी लोग हैं उनका चित्र आएगा, कोई हिले हिलता डुलता नहीं, ऐसे ही लगे दोनों वहां निमित्तों को देखकर फल का विचार करके उन्होंने विचार स्थिर कर लिया और निर्णय निश्चित परिणाम जान लिया है। दोनों युद्ध का परिणाम निश्चित है, दोनों ने जान लिया, इसलिए निर्णय को युद्ध करते। अगर परिणाम निश्चित है तो फिर व्यक्ति जो है युद्ध के लिए निर्भय हो जाता है, निर्भय, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। किसी को विजय का निश्चित परिणाम पता है कि विजय निश्चित है तो निर्भय होकर युद्ध करता है, और किसी को पता है कि मृत्यु निश्चित है मेरे, तो फिर निर्भय होकर युद्ध करता है। अब तो मर गई, चलो दोनों युद्ध कर रहे हैं क्योंकि दोनों को पता है निश्चित परिणाम। रावण को पता है क्या? निश्चित मृत्यु, तो वो निर्भय होकर युद्ध करता है। अब क्या, कोई चिंता नहीं, तो मरना ही। और राम को पता है निश्चित विजय, तो वो युद्ध कर रहे हैं। इस तरह का युद्ध है, बड़ा पवित्र होगा। रावण यद्यपि बहुत अपवित्र आचरण वाला है, लेकिन इस समय उसका जो भाव है वो पवित्र है। इस समय उसका जो कर्म है वो पवित्र है, इससे उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, उसका कर्म भी पवित्र हो जाएगा, क्योंकि उसने सोच लिया है कि मुझे मरना है और युद्ध करना है। तो ये उसका कर्म इतना पवित्र है कि वो शुद्ध हो जाएगा उस दूषित कर्म से। श्री राम को विश्वास था कि उनकी जीत होगी, रावण को निश्चित पता था कि मरना है। दोनों युद्ध में अपना पूरा पराक्रम प्रकट करके युद्ध कर रहे हैं। जेतम जमिति कांकृतो मर्तम जमिति रावणीर युद्धे जेतव्यम मर्तव्यम जेतव्यम राम जेतव्यम जीतना ही है और मर्तव्यम मरना ही रावण निश्चित, इसलिए पूरा पराक्रम दिखा रहे हैं। उस समय पराक्रमी रावण ने क्रोध पूर्वक बाणों का संधान करके श्री राम के ध्वज पर ध्वजा को निशाना भेजा को काटने के लिए। रावण ने बाण छोड़े। तथा क्रोधा ग्रीवा सलाम संधाय राघव से। अच्छा राम को रथ कैसे मिला? अब वो तो बात मैं है इंद्र के द्वारा। जीवता को जब युद्ध देख रहे हैं तो उनको जो है बड़ा बड़ी लज्जा हो रही क्या कि हमारे पक्ष में जो श्री राम है वो पैदल युद्ध करें और रावण के पास इतना बढ़िया रथ है। तो इंद्र ने अपने सारथी को बुलाया, बोला मेरा रथ लेके जाओ और श्री राम को कहो कि आप मेरे रथ में बैठ करके युद्ध करिए। तो इंद्र का जो रथ है, इंद्र का जो सारथी है वो श्री राम को मिल गया। इस तरह से तो रावण ने अभी सबसे पहले प्रहार ढाक दिया राम के रथ की ध्वजा ध्वजा में प्रहार किया। तथा क्रोधा ग्रीवा सलाम संधाय वीर्यवान राघव से रथे जान। परंतु उसके चलाए बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक ना पहुंच सके, केवल रथ की शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर गए। रथ की शक्ति अपने धनुष को खींचा और रावण का बदला चुकाने के लिए उसके ध्वजा को काट गिराने का विचार। राम भी जो है बराबरी का युद्ध कर रहे हैं, युद्ध का आनंद ले रहे हैं। अगर चाहे तो रावण को एक मारने तो युद्ध का आनंद क्या होगा। इसलिए राम भी जो है उस युद्ध का आनंद देने के लिए है ना बराबर का युद्ध कर रहे हैं। तो रावण ने श्री राम के रथ की ध्वजा को काटने का विचार किया था तो काट तो नहीं पाया। राम ने कहा अब मैं किसी रथ की ध्वजा को काटूंगा। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान तीखा बाण छोड़ा। तेजस्वी श्री राम ने उस ध्वज को निशाना बनाकर अपना बाण चलाया और वो उस ध्वज को काट करके पृथ्वी में चला गया। राम का जो बाण है वो अचूक है, रावण का बाण जो है चूक गया है, ध्वजा को नहीं काट पाया। लेकिन राम का जो बाण है रावण की ध्वजा को काट करके जमीन में समा गया। तो रावण क्रोध से जलता और विपक्षी को जलाता हुआ जान पड़ा, रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने बाणों से श्री राम के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया। अब राम के घोड़ों को घायल, परंतु घोड़े दिव्य थे इसलिए ना तो गलत आए और ना विचलित हुए। रावण के बाणों से घोड़े विचलित नहीं, लड़खड़ाए भी नहीं, मानो कमल की नालों से प्रहार किया गया। कमल की नाल घोड़े को मानो क्या, राम के घोड़े जो है दिव्य। उन घोड़ों का घबराहट में ना पड़ता देखकर रावण का क्रोध और बढ़ गया। अरे ये घोड़े भी नहीं घबरा रहे, घायल नहीं हो रहे, घबरा नहीं रहे मेरी बाणों की वर्षा से, तो बहुत गुस्सा। तो फिर उसने बाणों की वर्षा की, गदा चक्र परिघ मूसल पर्वत के शिखर वृक्ष सूल भस्से और अन्य अन्य शस्त्रों की वर्षा की। रावण घोड़ों शस्त्रों की विशाल वर्षा बड़ी भयानक थी। वो शस्त्र वर्षा श्री राम के रथ को छोड़कर सब वो वानर सेना की ओर पड़ गए। अब राम के रथ पर नहीं पड़ रही है, राम के रथ राम का रथ इतना दिव्य है कि राम के रथ पर नहीं पड़ रही है, और कहाँ पड़ रही है, वानरों की सेना की ओर पड़ रही है। रावण ने प्राणों का अपमान छोड़कर बाणों का प्रयोग किया, अपने बाणों से आकाश को ठसा ठस भर दिया। इतने बाण छोड़े तब रावण को बाण चलाने में बहुत परिश्रम करते थे। श्री राम ने हंसते हुए से तीखे बाण चलाए, बेचारा परिश्रम तो बहुत कर रहा है, तो राम ने हंस करके बाण चलाया। वो तो परिश्रम कर रहा है, रावण का तो बहुत परिश्रम हो रहा है, लेकिन राम हंस करके तीखे बाण चलाते हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में चलाए। उन बाणों को देखकर रावण ने फिर अपने बाण बरसाए। दोनों के बाणों की वर्षा से आकाश बाणों से ऐसा हो गया कि बाणों से बना आकाश। इतने बाण उनका चलाए, कोई बाण लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं लग सकता। रावण के इतने बाण राम के रथ पर चलाए गए, लेकिन राम के रथ पर नहीं पहुंचे। लेकिन राम ने जितने बाण चलाए वो सब अचूक सीधे लक्ष्य पर पहुंचते हैं और विदीर्ण किए बिना नहीं रोकते हैं। राम का एक भी बाण लक्ष्य को विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता, निष्फल नहीं होता। इस तरह युद्ध में सत्र वर्षा करते हुए श्री राम रावण के बाण जब आपस में टकराए तो पृथ्वी पर गिरे, नष्ट हो गए। जब दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए युद्ध में लगे, भयंकर बाणों से आकाश को ऐसे भर दिया कि सांस लेने की जगह भी नहीं रही। ऐसा श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे प्रहार का बदला चुकाते प्रहार करते हैं एक दूसरे के यहाँ। इस प्रकार दोनों क्रोध में भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। दो घड़ी तक ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों के खड़े हो गए। दो घड़ी मतलब कितना? एक घड़ी 24 मिनट की, दो घड़ी 48 मिनट। 48 मिनट का मतलब कौन घंटा सुन? ऐसा युद्ध हुआ कौन घंटा है कि ड्रोन पे खड़े एवं तो संतम बुद्धा चक्रधर युद्धमंतम मुहूर्तम वर्धितम कुमलम ड्रोन हर्षम। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्री राम रावण को सभी प्राणी चकित चित्त से सब चकित हो गए। दोनों राम राम तो दोनों के श्रेष्ठ सर्वभूमि में एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे, एक दूसरे के पते के प्रेम में लगे। दोनों भी बड़े भयानक, बहुत भयानक है। दोनों के सारथी कभी कभी तो चक्कर काटते ही ले जाते हैं। दोनों के सारथी बहुत निपुण रथ को चक्कर काट करके ले जाते हैं। कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते हैं और कभी आगे के बढ़ाकर पीछे को दौड़ा लेते हैं। इस प्रकार दोनों विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय देने लगे। कैसा रथ ऐसे आए इधर चले गए, ऐसे इधर चले गए, ऐसे इधर चले गए, सीधे आए गए, ऐसे आए थे घूम करके आए। इस तरह से बड़ा दुख श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे, रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार दोनों गति बहुत गति है। बाणों की वर्षा करते दोनों के रस जल की धारा गिराते हुए जो दो बादलों के समान दिखाई दे रहे हैं। दो बादल जल की धारा बरसा रहे हैं बाणों की वर्षा कर रहे हैं। वे दोनों प्रति भांति भांति की गति दिखाने के बाद आमने सामने जाकर खड़े हो। अब कितनी प्रकार की गति दिखाई और फिर सीधे का सीधे खड़े हो आमने सामने। उस समय वहां खड़े हुए दोनों रथों के युगंधर युगंधर से मिल गए, घोड़ों के मुख से मिल गए, पताकाएं पताकाओं से मिल गई, टकराए घोड़े घोड़े से और युगंधर युगंधर से पताका पताका से टकराए। धर्म धर्म पताका भी समय सदा। तब श्री राम ने अपने धनुष से छुटे हुए चार पहने बाणों को मारा, राम रावण के चार घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। चार बाण मारे चार घोड़ों को, रावण के रथ के चार घोड़े हैं हाँ, तो घोड़ों को पीछे हटा दिया राम। घोड़ों के पीछे हटने पर रावण क्रोध के वशीभूत हो गया, श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। क्यों? कि घोड़ों पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है, घोड़ों पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है, या तो घोड़ों की गति इतनी तेज है उसके बाद लक्ष्य पर नहीं जा पा रहे, जो भी हो या घोड़े इतने तेज हैं कि रावण के रथ रावण के जो बाण है उन पर कमल की नाल के चले। और रावण के बाणों से राम के चेहरे पर सिकंद भी नहीं आई, उनके मन में व्यथा भी नहीं हुई रावण के बाण। तब रावण ने इंद्र के सारथी मांगने वो वज्र के समान बाण शांति के लिए। अब राम को बाण मानते हैं तो स्मरण नहीं करा, घोड़ों को बाण मानते करते हैं तो सारथी भी मारा। तो रावण ने किसको मारा? बाण सारथी को, कई बाण मारे। चिच्छे बचा पुनर्बाणा वज्र सारे समस्त नाम, सारथिन वज्र हस्तर से समुद्र से असान नाम। वे बाण माता जी के शरीर पर पड़कर थोड़ा सा भी व्यथा नहीं दे सके। रावण के बाण माता जी के शरीर पर भी लगे लेकिन कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कितना आश्चर्य! रावण के जो बाण है न तो ध्वजा को काट पाए, राम के बिना तो ध्वजा को काट पाए, है ना। राम को मारे हैं तो उनको भी कोई व्यथा नहीं हो रही, घोड़ों को मारे तो कोई व्यथा नहीं हो रही, सारथी को मारे तो कोई व्यथा नहीं हो रही। रावण पर माता जी के प्रति आक्रमण से श्री राम को क्रोध हुआ, जैसा अपने पर किया आक्रमण से क्रोध नहीं हुआ था। सारथी पर आक्रमण के तो राम को इतना क्रोध हुआ जितना अपने ऊपर आक्रमण करने से क्रोध नहीं हुआ। राम का एक गुण है, सारथी को जो है अपने से ज्यादा महत्व दे रहे राम। अतः उन्होंने बाणों का जाल बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। अब रावण जो है देख नहीं सकता राम ऐसे बाण मारे। रावण श्री राम शत्रु के रथ पर 20 बाण मारे, फिर 30 बाण, फिर 60 बाण, फिर 100 बाण, फिर 1000 बाण। पहले कितने? 20, फिर 30, फिर 100, फिर 1000। विंशतिम त्रिंशतिम षष्ठिम शतशोम सहस्र सहान मोच राघवो वीरा सायकान चंदने रिपो। तब रथ पर बैठे हुआ रावण भी कुपित हो रहा और गदा मूसलों की वर्षा से श्री राम को पीड़ा दे रहा है। गदा की वर्षा और मूसल की वर्षा कर रहा। अब ये गदा और मूसल ये अस्त्र नहीं शस्त्र है। अस्त्र शस्त्र का मतलब हाथ से पकड़ करके मारा जाता है, गदा को नहीं मारा जाता, मूसल को फेंक नहीं मारा जाता है, हाथ से पकड़ करके मारा जाता है। लेकिन वो उनको वर्षा कर रहा है, गदा मूसल की वर्षा शस्त्र को भी अस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहा। इस प्रकार उन दोनों का पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। गदाओं मुसलों परिघों की आवाज से और बाणों की हवा से सातों समुद्र विक्षिप्त हो गए। सात समुद्र क्या हो गया? बड़ा छोड़ हुआ। कैसे? गदाओं की आवाज, मूसलों की आवाज, परिघों की आवाज और बाणों की आवाज, सातों समुद्र क्या हो गए? छुप्त हो गए, छुप्त हो गए। उन समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले दानव और हजारों नाग व्यथित हो गए। समुद्रों के नीचे कहाँ है पाताल? वहां पर नाग और दानव वो भी व्यथित हो गए कि क्या दुर्घटना हो रही है। समुद्र के नीचे तक व्यथा हो, वैसे तो समुद्र के ऊपर कुछ व्यथा होती है तो अंदर तो कुछ पता नहीं चलता, इतने गहरे हैं। लेकिन समुद्र के अंदर तक व्यथा हुई, नीचे पहाड़ में जो नाग और दानव है वो भी व्यथित हो गए। पर्वतों वनों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी, सूर्य की प्रभाव रुक गई, वायु की गति भी रुक गई। देवता गंधर्व सिद्ध महर्षि किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गए। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयाः चिंतां आपेदिरे सर्वे च किन्नर महोरगाः। सबके मुंह से यही बात निकलने लगी कि गौ ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब लोगों की रक्षा हो, श्री राम युद्ध में रावण पर विजय पाए, ऐसा सब लोग कामना करने लगे। स्वस्ति को ब्राह्मणे व्यस्तो लोकास्ति संत सांसुता जयताम राघवा सांगे राक्षसेश्वरम। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से देवता श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वों और अप्सराएं उस युद्ध को देखकर कहने लगे, आकाश आकाश के जैसा है, समुद्र समुद्र के जैसा है, और राम रावण के युद्ध राम रावण के युद्ध जैसा है। आकाश की तुलना और किससे करने से भी आकाश जैसा, समुद्र की तुलना किससे कर समुद्र जैसा, ऐसे राम रावण के युद्ध भी कैसा, राम रावण के युद्ध जैसा, मतलब कोई युद्ध नहीं है ऐसा। राम रावण युद्धम राम रावण एवं ब्रह्म को तुद्धम राम रावण। तब श्री राम ने कुपित होकर धनुष पर एक बाण का संधान किया, उसके द्वारा कुंडल स्वरूप रावण का सुंदर मस्तक काट डाला। क्या किया, एक बाण से रावण का मस्तक काट डाला, वो कटा हुआ सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तीनों लोगों के प्राणों में देखा। उसकी जगह रावण के वैसे ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। रावण का सिर कट गया, सबने देखा, तीनों लोगों ने देखा, और फिर उसकी जगह दूसरा सिर प्रकट हो गया। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले श्री राम ने बाणों द्वारा रावण का दूसरा सिर भी शीघ्र काट दिया। उसके कटते पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्री राम ने बाण से काट डाला। तीसरी बार इस प्रकार एक एक करके सौ सिर काट, रावण के एक एक करके सौ सिर काट दिया, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत नहीं दिखाई दिया। कितने सिर है उसके, सौ सिर काट। तब श्री राम बाण शुद्ध होने पर भी चिंता करते हैं, चिंता कर, अहो मैंने जिन बाणों से मरीच को मारा, खर और दूषण को मारा, क्रौंच मन में विराज का वध किया, दंड कारण्य में कबंध को मारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया, बाली के प्राण दिए, समुद्र को क्षुभ कर दिया, यही बाण सब आज रावण के ऊपर कुंठित हो गए हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। कुंठित तो नहीं हो रहे, काट तो है सिर्फ, लेकिन उसका सिर्फ फिर से निकल रहा है, तो वो भी एक प्रकार से कुंठा ही है, तो राम के क्या कारण। इस तरह चिंता बड़े होने पर श्री राम युद्ध में सावधान रहे, उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगाई, सावधान रहे, क्यों तो उसको मौका नहीं दिया है कि वो प्रहार करे, तो छाती पर बाणों की झड़ी लगाई। तब रावण ने कुपित होकर श्री राम को भेदा और मूसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, देवी रोंग के खड़े हो जाते थे, और युद्ध आकाश में होता, कभी कभी पृथ्वी पर होता, कभी पर्वत के शिखर पर होता। रथ रथ भी जो है ऐसे आकाश में भी चलते, आकाश में रथ युद्ध होता है, पर्वत के शिखर पर चल जाते हैं, वहां पर युद्ध होता है, और पृथ्वी पर भी होता है। महान संग्राम को देख रहे और पूरी रात युद्ध चलता रहा, पूरी रात युद्ध चलता रहा। श्री राम रावण का युद्ध न तो रात में बंद होता है न दिन में बंद होता है, एक क्षण के लिए भी विराम नहीं है, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं है। एक ओर श्री राम दूसरी ओर रावण, उन दोनों में से श्री राम की युद्ध में विजय होती न देखकर सारथी मातली ने श्री राम से शीघ्रता पूर्वक, किसने कहा, किससे,
मातली ने राम
से, मातली जो इंद्र के सारथी हैं, श्री राम से कहा, क्या कहा, वीर आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं, आपको जैसे पता नहीं है, मातली कहते हैं कि आपको जैसे कुछ पता नहीं है इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं, मतलब वो जितना युद्ध करता है उतना युद्ध करते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे, आप इसके बद के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए, देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया वो अब आ गया, देवताओं ने समय निश्चित किया रावण के मृत्यु का वो आ चुका है। मातली के इस वाक्य से श्री राम को उस अस्त्र का स्मरण हुआ है, देखो मनुष्य लीला कर रहे हैं, भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य बोलते हैं, भगवान थोड़े बोलते हैं, तो मनुष्य भगवान लीला करते हैं। तो माता ली ने बताया तब उनको याद आया, फिर तो उन्होंने एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। ये वही बाण था जिसे पहले अगस्त मुनि ने श्री राम को दिया था, ये ब्रह्मा जी का दिया था बाण, अमोघ बाण। ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए इस बाण का निर्माण किया था, इसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र। और तीनों लोगों पर विजय पाने की इच्छा से इंद्र को ही ये अर्पित किया था। किसने? तीनों लोगों पर विजय पाने की इच्छा से इस बाण को अर्पित किया था इंद्र को। किसने? ब्रह्मा जी। उस बाण के वेग में वायु की प्रतिष्ठा, धार में अग्नि की प्रतिष्ठा, सूर्य की, शरीर में आकाश की प्रतिष्ठा और भारीपन में मेरु सुमेरु पर्वत की प्रतिष्ठा थी। सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। सोने से भूषित सुंदर पंख से युक्त प्रलय काल की अग्नि के समान, विस्तर सर्प के समान विशाला, मनुष्य हाथी और घोड़ों को विधि निकल डालने वाला, शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दरवाजों, परिकों, पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने की शक्ति थी। सारा बाण नाना प्रकार के फूल में नहाया और चर्बी से पुष्ट किया गया था। देखने में बड़ा भयंकर था, वज्र के समान कठोर था, महान सदस्य युक्त था, अनेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला था, सबको त्रास देने वाला और फुफकारते हुए सांप के समान भयंकर था। युद्ध में यमराज का भयानक रूप धारण कर लेता था और युद्ध भूमि में चौबे गीत बकुले गीदड़ और पिशाचों को भोजन प्रदान करने वाला। वो बाण जो युद्ध में गीत बकुले गीदड़ और पिशाचों को भोजन प्रदान करता था। वो बाण बानर बानरों को आनंद प्रदान करने वाला और राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वो पंख युक्त बना हुआ था। वो उत्तम बाण समस्त लोगों और एक छाकू वंशियों के भय का नाशक था। शत्रुओं की कीर्ति का हरण करने वाला और अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला। उस महान बाण को वेदों की विधि से श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया। श्री राम जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे तो संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे, पृथ्वी हिलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो धनुष को पूरा खींच करके उस मर्म वेदी बाण को राम पर चला गया। सरावणाय संवृद्धो विषमायं कारुणिकं चिक्षेपे परमायत्ता शरं वर्धय विदारिणम्। इंद्र के हाथों से छोटे हुए वज्र के समान और काल के समान अनिवार्य को बाण रावण की छाती पर लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस बाण ने छूटते ही रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वो बाण उसके खून से रंगकर धरती में समा गया। वो बाण कहां चला गया? धरती में समा गया, खून से रंगा हुआ धरती में समा गया। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वो बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात विलीन सेवक की भांति श्री राम के तरकस में लौट आया। रावण का वध किया, खून से सन गया, पृथ्वी के अंदर चला गया और फिर आकर के विनीत सेवक की भांति राम के तरकस में चला गया। और क्या आज्ञा है? और मेरे लिए कोई आज्ञा है? ये इस तरह से श्री राम के बाण के चोट खाकर ब्राह्मण जीवन से हाथ धो बैठा, उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से बाण सहित धनुष भी निकल गया, प्राण निकले और साथ साथ हाथ से धनुष और बाण भी निकल गए। तस्य हस्तान तस्य आसु पार्वतम तत्सायकम जब बात ऐसा कारण है दृश्यमान सजीविता, वो भयानक राक्षस राज प्राण ही नहीं पर वज्र के मारे हुए दृढ़ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए निशाचर स्वामी के मारे जाने से पहले होकर सब और भाग गए। रावण का वध होता रावण का वध हुआ देखकर विजय से शोभित वानर वृक्षों का युद्ध करने वाले गर्जना करने वाले वानर राक्षसों पर टूट पड़े। अब राक्षस भागे और राक्षस रावण माना जो है टूटे उन हर्ष पर बसे वानरों द्वारा पीड़ित के जाने पर राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए, क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया, उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय वानर विजय से शोभित थे, हर्ष उत्साह से भर गए, श्री राम की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। क्या बोलते हैं, श्री राम की विजय हुई रावण का वध हुआ, जोर जोर से गर्जना। ततो विनेत संग्रिष्टा वानराज तकाशनम वदन्तो राघव जयम रावणास रावणस्य च तत्पदम। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की धुनधुनियां बजी, देवताओं की वायु दिव्य सुगंध को झेलते हुए मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अथांतरिक्ष जनगण सौम्या त्रिदश गंधुनी दिव्य गंध वहस्तत्र मारुता सुरसुखो भगव। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर श्री राम के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, जो दुर्लभ और मनोहर, ऐसे फूलों की वर्षा जो दुर्लभ है, ऐसे फूल जो दुर्लभ है इस पृथ्वी पर होते नहीं, मनोहर और दुर्लभ फूलों की वर्षा, क्योंकि वे स्वर्ग के देवताओं के द्वारा हो रही थी। आकाश में देवताओं के मुख से निकली हुई श्री राम की स्तुति से जब साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। राघवस्तव संयुक्ता गगने चांद सुश्रभे साधु साधु थी वाग्रिया देवता नाम महात्मा। जो देवता हैं और महात्मा हैं वे श्री राम का की प्रशंसा करते हैं, कैसे साधु साधु, जैसे हम लोग बोलते हैं वेलकम है ना, तो देवताओं की भाषा में क्या बोलते हैं साधु साधु। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। आवेश महान हर्षो देवानां चारण सह रावणे नेते रौद्रे सर्वलोक भयंकरे। रावण का मतलब यह जो सबको रुला, लोक रावण रावण, लोक रावण का मतलब जो सब लोगों को रुलाता है, सो रावण को आज वो मारा गया। श्री राम ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव अंगद और विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता, तब देवताओं को बड़ी शांति मिली, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गई और प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कंपन बंद हो गया, पृथ्वी का कंपन बंद हो गया, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी और सूर्य के प्रभाव भी एक जैसे हो गए। रावण के भय से इतना था, हवा भी जो है डरती थी, वायु सूर्य का प्रकाश भी जो है बदलता रहता था डर के मारे।
तथा प्रसन्न प्रसन्नमरुद्गणा से दुर्मिमलं नभोभवन् महेशकम्बे समारुद्भवो यस्ते प्रभश्चाप्य नभन्दिवाकरः सुग्रीव विभीषण अंगद लक्ष्मण अपने श्रोतों के साथ युद्ध में श्री राम की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सबने मिलकर श्री राम की विधिवत पूजा की। तदस्तु सुग्रीव विभीषण अंगदा सुरेंद्र शिष्टा सार लक्ष्मणस्तदा समेत हृष्टा विजयेन्द्र राघवम हृदय विराम विधिनाभ्य पूजयन् शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके सुजान से सेना से घिरे हुए महातेजस्वी श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा रहे। अभी यहाँ अध्याय समाप्त हुआ और उसी समय ही मंदिर बन हुआ। ये अध्याय समाप्त हुआ और अध्याय संख्या कितनी है 108। अध्याय की संख्या क्या है 108। युद्ध कांड वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का 108वां अध्याय है ना। यह भी समाप्त हुआ है, उस समय मंदिर बंद हुआ है ना।
राम जी का खुला है,
राम जी का खुला है, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जगद्गुरु श्रीलंग।